الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو کافی گیپ کے بعد ہم یہ کلاس دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اس میں سورہ انعام کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 3. تو سورہ انعام کی جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، 65, 66 اور 67, 66, 65, 66 اور 67. تو ان کے ہم نے پورا مکمل پڑھ لیا. اچھا، یہ ابھی انہوں نے میسج لکھا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ نیو آیات 68 to 70. تو اس کا بالکل مکمل ہو گیا تھا. اچھا، میں سمجھا تھا کہ آخری کا ایک پیج جو ہے وہ رہتا تھا اس کی تفسیر میں سے، لیکن چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا، پورا یاد نہیں ہے. اچھا، تو آگے کی آیات میں ہم شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات اب تلاوت کی گئی ہیں، ان سے ہم آج کی کلاس شروع کر رہی ہیں. یہ آگے کی آیات ہیں جو اس سے پہلے ہم نے چونکہ تلاوت بھی نہیں کری تھی، اس وجہ سے اس پورے مجمع یعنی اس پورے گروپ آف آیات کو ایک ساتھ ایک دفعہ تلاوت کر لی. اب آگے جو ہے وہ ہم ساری آیات کو کلاس کے شروع میں، ہر کلاس کے شروع میں نہیں پڑھیں گے. تو ان آیات کا پہلے ہم جیسے ترتیب ہے ہماری کہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر خلاصہ تفسیر، اور پھر معارف و مسائل. ترجمہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ معارف القرآن کے اندر جو ترجمہ ہے وہ حضرت शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का किया हुआ तर्जुमा है, और आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड तर्जुमा है तो वो फिर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दाम वकातहुम का किया हुआ तर्जुमा है, जो कि आसान तर्जुमा कुरान के नाम से छपा हुआ है। लेकिन ये तर्जुमा जो है वो इस वक्त मेरे सामने किताबी शक्ल में या किसी और शक्ल में है नहीं, और मेरे लिए ज़रा मुश्किल है स्क्रीन से पढ़ करके इस वक्त आपके सामने बयान करना। तो ये जो मारिफुल कुरान के अंदर तर्जुमा है ना, तो ये आज उसी को फॉलो करेगा, और आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर तर्जुमा है आप बेशक साथ साथ जो है वो उसको भी देखती रहें तो आपके लिए समझना और आसान इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में अपने हबीब अलैहि सलातो सलाम को फरमाते हैं कि वा इज़ा रअयता, और जब आप देखें और जब तू देखे, ठीक है, यानी इसमें भी नबी अलैहि सलातो सलाम ही को अल्लाह ताला मुखातब फरमा रहे हैं। पीछे जो आयात हमने बहुत सारी पढ़ी हैं तो उनमें आप को बाकायदा अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे थे कुल कह करके, कि कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए, राइट। लेकिन अब जो है वो ऐसा हुक्म नहीं फरमा रहे हैं कह दीजिए का, बल्कि दूसरे अंदाज में कोई और हुक्म फरमा रहे हैं कि इजा रही था, कि जब आप देखें अल्लजीना उन लोगों को, यखूदूना फी आयातिना, जो कि हमारी आयात, ठीक है, हमारी निशानियां हमारी आयात, जैसे कुरान मजीद की आयात जो है ये अल्लाह ताला की आयात हैं, अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम उनको पढ़ पढ़ करके सुनाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम की बिरासत के मकासद में से एक मकसद क्या था, यतलू अलैहिम आयातुना, ठीक है, कि वो उनके सामने हमारी आयात को तिलावत करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि जब आप ऐसे लोगों को देखें ना, यखूदूना फी आयातिना, जो हमारी आयात में झगड़ते हैं, ठीक है, खावा यखूद, झगड़ना, बहस मुबाहसा करना, ठीक है, यानी उनके क्या उसका मफहूम है, उसका क्या जो है वो मानी है, तो उसके ऊपर जो है वो झगड़ने की नौबत आ जाती है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी दलील से ये बात समझा हूं कि इसका ये मतलब है, दूसरा कहे कि भाई मैं अपनी इल्मी दलील से ये बात समझा हूं कि इस आयत का ये मतलब है, तो ये तो इल्मी इख्तलाफ हो गया ना, जिसके बारे में हम पीछे तफसील के साथ पीछे की आयत के तहत ये बात कर चुके हैं कि भाई इल्म वालों के दरमियान राय का इख्तलाफ हो जाना तो ये कोई मसला नहीं होता, इल्म वालों के दरमियान राय का इख्तलाफ हो जाना ये कोई मसला नहीं होता, बल्कि ये रहमत होती है, ठीक है, और ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पैदा फरमाया है कि भाई किसी इंसान की कोई राय होती है, किसी इंसान की कोई दूसरी राय होती है किसी मामले के ऊपर, ठीक है, जाहिर सी बात है और बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि राय की अहमियत भी उसी वक्त होती है ना जब इल्म की बुनियाद पर वो राय कायम की गई, ठीक है, इल्म की बुनियाद पर जो राय कायम की जाती है तो उसकी अहमियत होती है, बेशक वो मुख्तलिफ हो दूसरे इल्म वाले की राय से, लेकिन राय की इख्तलाफ का ये मतलब तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही इल्म नहीं है किसी मामले में और अपनी तरफ से जो है ना वो एक गुमान करके राय कायम कर ली कि भाई मेरे पास भी राय के इख्तलाफ का हक है तो इस वजह से मेरी राय ये है कि ऐसे होना चाहिए, हालांकि आपके पास उस मामले का इल्म है नहीं, आपके पास उस फील्ड की नॉलेज है नहीं, आपने बस जो है वो यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग एन ओपिनियन आपने अपना एक ओपिनियन बना लिया, ठीक है, इल्म के बगैर ओपिनियन बना लिया, ठीक है, तहकीक आपने नहीं करी, आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने किसी से मालूम नहीं किया, ठीक है, आपने गौर व खौज नहीं किया उस मामले में, बस एक राय बना ली और उसके ऊपर बात जो है वो उस राय के ऊपर कि जी ये मेरी मुझे भी राय की, दूसरे लोग मेरी राय से मेरी राय से इत्तेफाक ना करें लेकिन मुझे तो अपनी राय का हक है, तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा, राइट, ऐसे शख्स को बेवकूफी कहा जाएगा, राइट, और ऐसी राय के इख्तलाफ की कोई हैसियत नहीं समझी जाएगी कि भाई ये तो बगैर इल्म के आपने राय का इख्तलाफ बना लिया है ना, ठीक है, तो ये नहीं होता राय का इख्तलाफ,
कि बगैर इल्म के, बगैर तहकीक के, बगैर नॉलेज के आप अपनी कोई राय बना लें किसी चीज के बारे में, ठीक है, और कहना शुरू कर दें कि भाई मैंने तफसीर में पढ़ा था, मैंने तफसीर की क्लास में सुना था कि राय के इख्तलाफ का हक है हर एक को। भाई हर एक को किससे मुराद यहाँ पर? इल्म वाले को हक है ना, जाहिल को हक नहीं है अपने राय के इख्तलाफ करने का। हमारे यहाँ ये बहुत होता है, ठीक है, खुसूसन दीन के मामलात में हर बंदे की अपनी एक राय होती है, ठीक है, कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये ठीक है, ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। हालांकि उसको कुछ पता नहीं कि दीन क्या कहता है ना, कुरान क्या कहता है, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या कहती है, ये ऐसे करना चाहिए काम को, उसको नहीं पता ये सारी बात। अज्यूम करके बैठा हुआ है कि उसको पता है ये सारी बात है, और अपनी तरफ से एक राय बना ली उसने। तो ऐसी राय के इख्तलाफ का कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो एक के बगैर इल्म के अपनी राय का इख्तलाफ बना लेना, ये आपका हक नहीं है, ठीक है ना, ये किसी का हक नहीं है कि बगैर इल्म के राय बना के बैठ जाओ गुमान की बुनियाद पर, ठीक। दूसरी बात जो यहां पर हो रही है वो क्या, कि यखुदूना फी आयातेना। तो यखुदूना फी आयातेना का मतलब क्या, कि भाई अगर इल्म की बुनियाद पर आप किसी आयत के मफहूम में इख्तलाफ कर रहे हैं तो उसकी गुंजाइश है, इल्म की बुनियाद पर ना, आपके पास कोई हदीस पहुंच, हदीस से आपको पता चला ये मतलब है, दूसरे आलिम के पास कोई दूसरी हदीस पहुंची या कोई अकली दलील पहुंची, उसकी बुनियाद पर उसने कहा कि भाई इस आयत का ये मतलब है, ठीक है। तो ये इल्मी इख्तलाफ हो गया दोनों के दरमियान, ठीक है। तो अब ये इल्मी इख्तलाफ हो गया, ठीक है, इल्मी इख्तलाफ होता है उलमा के दरमियान, लेकिन इस इल्मी इख्तलाफ को बुग़्ज़ और कीने का सबब बना लेना और दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देना, जैसे कि जो आखिरी जुमे का बयान हुआ था हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वफात से पहले रियाज के अंदर, उसके अंदर ये बात समझाई थी ना कि भाई उसके पास भी कोई दलील थी, इसके पास भी कोई दलील थी। अब बजाय इसके दलील से, बजाय इसके कि ये दलील से उसकी दलील का जवाब दे, इसने क्या सोचा कि मैं जो हूं ना वो दूसरे आलिम के ऊपर कोई इल्जाम लगा देता हूं ताकि लोग उसको बुरा समझना शुरू हो जाए। जब लोग उसको बुरा समझना शुरू हो जाएंगे तो उसकी दलील को सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो फिर मेरी ही दलील लोगों को सुननी पड़ेगी, राइट। तो ये इल्मी इख्तलाफ को किस तरह से आपने हैंडल किया, दलील के जरिए से हैंडल नहीं किया, आपने झूठ के जरिए से, कीने और बगौस के जरिए से हैंडल किया ना इल्मी इख्तलाफ को, ये हराम है, ठीक है। तो यखुदूना फी आयात, ये ना आयात में झगड़ने का ये मतलब है, ठीक है। तो फरमाया कि ऐसे लोगों को जब आप देखें ना कि जो कि हमारी आयात में झगड़ रहे हैं, ठीक है, फअअरिज़ तो आप उनसे एराज करें, आप उनको इग्नोर करें, किनारा कश हो जाए उनसे, ठीक है, एराज करना जिस तरह उर्दू में भी कहते हैं ना, हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरिही, हत्ता के वो किसी और काम में, किसी और बात में मशगूल हो जाए, ठीक है, हत्ता के वो किसी और बात में मशगूल हो जाए। अब यहां पर नबी अलैहिस्सलाम की जो बात हो रही है तो जाहिर है उस जमाने में आयात में झगड़ना जो है ये कौन लोग किया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम के मौजूद होते हुए कौन लोग आयात में झगड़ा करते थे, ये कुफार झगड़ा करते थे, ठीक है, आपस में वो लोग भी कि भाई मेरा ये मतलब, मैं ये समझा हूं और दूसरा कहता मैं ये समझा हूं, ठीक है। हालांकि जो आपको ये आयात बता रहा है वो मौजूद है, आप उससे पूछ लो भाई, लेकिन नहीं, अपनी चलाना, अपनी जो है ना वो, जैसा आज भी कोई आलिम दीन कमरे में मौजूद हो, ठीक है, जो दर्स देने वाले आलिम दीन कमरे में मौजूद हो, लेकिन जो ऑडियंस है ना अवामुन नास की जो ऑडियंस है, तो वो आपस में बहस करना शुरू कर दें कि भाई ये इसका मतलब है, वो क्या दूसरा का है, ये इसका मतलब है, सामने जो है वो मौलवी साहब बैठे हुए जिन्होंने दर्श दिया है, उनको कोई नहीं सुन रहा, उनसे कोई नहीं पूछ रहा, ये आपस में लड़ने लगे पड़े हुए, ठीक है। तो उस जमाने में ऐसा कौन करता था, सहाबा ऐसा काम नहीं करते थे, कि नबी अलैहिस्सलाम सामने मौजूद हैं और आपस में जो है वो बहस मुबाहसे के अंदर लगे पड़े हुए। ठीक है, तो ये काम कौन करते थे? ये तो कुफार करते थे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया गया कि आप ऐसी मजलिस से उठ जाएं, ठीक है, जहां पे लोग आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको मुअल्लिम का मुकाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुअल्लिम नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बना के भेजा, आप ही तो आयात लेकर के आए थे, आप ही तो आयात बताने वाले थे, और जब ये लोग सुन लेते थे तो अब खुद ही जो है ना अपनी तरफ से जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन शुरू करते थे, हालांकि मुअल्लिम तो नबी अलैहिस्सलाम है। तो तरीका क्या है कि मुअल्लिम से पूछो भाई, अपनी तो मत चलाओ ना। सही है, तो जो शागिर्द जो है अपनी चलाना शुरू कर देते हैं तो उस्ताद को क्या हुक्म है कि उनसे एराज करो, और वो शागिर्द जाहिर है बदतमीज किस्म के शागिर्द ही होते हैं जो कि उस्ताद के मौजूद होते हुए अपनी चलाना शुरू कर देते हैं। अदब वाले शागिर्द तो ऐसे नहीं होते, जो अदब वाले होते हैं उनसे अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो मुअल्लिम को ये नहीं है कि आप उठ के चले जाएं, बल्कि मुअल्लिम को ये है कि आप उनको चुप करा दें। वो एक दफा उस्ताद साहब डांटेंगे तो शागिर्द चुप हो जाएंगे, शागिर्द सुनना शुरू कर देंगे फिर से। लेकिन जो इनकारी किस्म के बैठे होते हैं ना, वो तो नहीं डांट के ऊपर चुप चुप होंगे, वो तो नहीं सुनना शुरू कर देंगे। तो फिर अब क्या फरमाया, आरेदौन, आप उनको उनसे किनारा कश हो जाए। ठीक है, जब तक कि वो किसी दूसरी बात के अंदर, हदीस का मतलब क्या कि कोई नई बात, कोई नई चीज गैरी, उसके अलावा, ठीक है, तो तब उसके बाद फिर आप वापस उसके अंदर उस मजलिस में आ सकते हैं। व इम्मा युन्सियन्नक शैतानु, और अगर इम्मा का तर्जुमा उर्दू में अगर से करते हैं, युन्सियन्नक शैतानु, शैतान आपको भुला दे, फला तक़ुद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिल ज़ालिमीन, तो फिर मत बैठ जाइए इस याद आ जाने के बाद, जब आपको बात याद आ जाए ना तो फिर मत बैठ जाइए। कादे का मतलब क्या होता है? बैठना। ला तक़ुद, मत बैठिए, बाद ज़िक्रा, याद आ जाने के बाद, मअल क़ौमिल ज़ालिमीन, कि ये जो जालिम लोग हैं ना जो कि आयात के अंदर झगड़ रहे थे, तो अब उनके पास मत बैठिए। क्या मतलब कि शैतान का कितना तज़किरा किया अल्लाह ताला ने। देखें, हम कहते हैं ना, अक्सर आपने भी सुना होगा कि शैतान को नहीं भूलना है, ठीक है, जिस तरह अल्लाह को नहीं भूलना है, हम तो अल्लाह को भूल जाते हैं, तो शैतान को भूलना तो बल्कि शैतान ही हमें असल में, तो असल में क्या होता है, हम खुद नहीं भूलते अल्लाह को, हमें शैतान भुला देता है, ठीक है, और हम शैतान से गाफिल होते हैं, तो इस वजह से जो है वो हम शैतान का यही काम होता है, इस्तहवद अलैहिम शैतान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब शैतान इनके ऊपर गालिब आ गया ना, ठीक है, इस्तहवद अलैहिम शैतान फअंसाहुम ज़िक्र अल्लाह, तो उसने इनको अल्लाह का जिक्र भुला दिया। ठीक है, तो अब हम जो है वो क्यों अपने मामलात को अल्लाह ताला से नहीं जोड़ पाते हैं? हम अपने पास जो खुशियां आती हैं हमारे पास, तो हम उन खुशियों के ऊपर दिल से अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा कर पाते? क्योंकि अल्लाह ताला को हम भूले हुए होते हैं। ठीक है, जो दीनदार बन जाते हैं तो फिर वो जुबान से तो कुछ कह भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या दिल से भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह? या दिल से तो ये समझ रहे हैं कि ये जो मेरे पास नेमत आई है ये तो मैंने कमाई है ना, मैंने इतनी अकलमंदी की बात करी कि इसकी वजह से मेरे पास ये नेमत आई, तो फिर अल्लाह किधर गया? तो फिर आप जो रूटीन में आकर के अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं, तो ये असल में तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रही हैं, क्योंकि असल में तो आप ये समझ रही हैं कि ये नेमत तो आपकी मेहनत की वजह से, या आपके किसी अमल की वजह से, या आपके किसी दोस्त की मेहरबानी की वजह से, या आपके किसी रिश्तेदार की वजह से आपको मिली है। तो अब जो आप जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं, ये तो एक धोखे का अल्हम्दुलिल्लाह है ना, ये असल अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं है। असल अल्हम्दुलिल्लाह तो उस वक्त होगा जब आप और हम ये समझ रहे होंगे कि ये नेमत अल्लाह ने मुझे दी है किसी मेरे हक की वजह से नहीं, मेरे इस्तेहकाक की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने फजल से और अपने एहसान से मुझे ये नेमत दी है, तब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा। ठीक है, तो हम जो है वो ये काम क्यों नहीं कर रहे होते हैं, शुक्र का जो हकीकी शुक्र होता है क्यों नहीं अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह को भूले हुए होते हैं। उसी तरीके से हमारे ऊपर कोई अजाब आता है, कोई मुसीबत आती है, ठीक है, तो हम उसको अल्लाह ताला के साथ क्यों नहीं जोड़ पा रहे होते हैं, हम किसी और से जोड़ रहे होते हैं, उसने गलत काम किया था इस वजह से मुसीबत आ गई, उसने ये गलत काम किया था इस वजह से मुसीबत आ गई। ठीक है भाई, अल्लाह ताला की मर्जी से आया ना जो कुछ भी हुआ है। दीनदार पीपल से आई एम रिलीजियस सो अल्लाह गेव मी, गलत कहते हैं ना जो दीनदार, जो समझते हैं अपने आप को दीनदार वो ये बात कहते हैं, आई एम रिलीजियस रिलीजियस दैट इज वाई अल्लाह गेव मी, ऐसी बात हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो शैतान ने अगर आपको बुला दिया, अब देखें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हमें हदीसों से मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर शैतान का जोर नहीं चलता था। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपको शैतान भुला दे तो इसका मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें ये बात बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा शैतान तो मुसलमान नहीं हुआ है ना, नबी अलैहिस्सलाम का शैतान जो था, जो कि हर इंसान के साथ लगा रहता है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी लगा था, लेकिन वो मुसलमान हो गया, यानी वो ताबे हो गया। ठीक है, तो अब वो कैसे काम करेगा अपना, वो तो नहीं कर सकता, हमारा शैतान तो नहीं मुसलमान हुआ ना, तो अगर शैतान भुलवा दे, ठीक है, इससे क्या पता चला कि भाई ये जो भूल चूक वगैरह करते हैं तो ये भी शैतान के इन्फ्लुएंस में आकर के करते हैं ना, तो अपने आप को जो ये समझता है कि जी मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, मैं तो बस मैं हूं और शैतान भी कुछ नहीं कर सकता मेरे खिलाफ, तो वो तो कुरान का इनकार कर रहा है ना। ठीक है, चाहे जुबान से ना करे, अगर जुबान से करेगा तो फिर तो काफिर ही हो जाएगा, लेकिन सोच में जो है गोया कि वो कुरान का इनकार कर रहे हैं, कुरान कह रहे हैं कि शैतान बुला देता है, कहते नहीं नहीं मुझे नहीं बुला सकता, तुम कौन हो भाई जो तुम्हें नहीं बुला सकता। ठीक है, तो इम्मा युनसी अन्ना का शैतानु फला तक़ुद बाद दिक्र, यानी इंसान से गलती हो जाती है, शैतान बुला देता है, लेकिन बाद में फिर फरिश्ता भी अल्लाह ताला ने साइड में रखा हुआ है, और अगर आपने नेक सोहबत इख्तियार करी है तो नेक इंसान भी जो है वो आपके साथ मौजूद है, वो आपको याद दिला देंगे, या फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ताला याद दिलवा देंगे। तो जब याद आ जाए तो अब ये मत कहो कि नहीं नहीं अब तो बॉय इट्स टू लेट, अब तो बहुत देर हो गई, अब मैं जो है वो क्यों करूं सही काम, पहले एक दफा गलती हो गई अब मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। नहीं, अब ठीक कर लो गलती को, अब तुम्हें अल्लाह ने याद दिलवा दिया है, अब जो है वो काम कर लो जो कि तुम्हें कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या फरमाया, ला तक़ुद बाद ज़िक्र अल्लाह ज़ालिम, जब याद आ जाए ना तो अब अपने एक्ट को ठीक कर लो, ये ना क्या करो कि याद भी आ गया और तुम एक्ट को ठीक कर भी सकते हो, लेकिन बस बहाने बना रहे हो कि नहीं 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 टू मच टू लेट टू लेट टू लेट, हाँ मखा के बहाने मत बनाया करो फिर। ठीक है, वमा अल्लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम, और नहीं है उन लोगों के ऊपर, अल्लज़ीना अला का जो लफ्ज होता है ना वो जिम्मेदारी के माने में इस्तेमाल होता है, कि नहीं है कोई जिम्मेदारी अल्लज़ीना उन लोगों पर, यत्तकून मिन हिसाबिहिम, ठीक है, जो मुत्तकी हैं, यानी अल्लज़ीना यत्तकूना, जो मुत्तकी हैं यानी अल्लाह ताला के हुक्मों की अहमियत को समझने वाले हैं और हुक्म पे अमल करने की कोशिश करने वाले हैं, वो यत्तकून हैं, मुत्तकी लोग। ठीक है, तो उन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है, मिन हिसाब मिन शैयन, झगड़ने वालों के हिसाब में से कोई चीज। ठीक है, मिन हिसाबहिम, किनके हिसाब में से, जो झगड़ने वाले लोग, ठीक है ना, अल्लज़ीना यखुदूना फिल आयातिना की तरफ, ये हम की जो जमीर है ना जो एक्चुअली बा के साथ लगे फिर वो हिम पढ़ी जाती है, वरना असल में ये हुम होता है, तो ये हुम की जो जमीर है ये किसकी जमीर है, किसका प्रोनाउन है, इसका नाउन किधर है, इसका नाउन है अल्लज़ीना यखुदूना फी आयातिना, ये इसका नाउन। ठीक है, तो उन लोगों के हिसाब में से कुछ नहीं है जो तकवा वाले लोग हैं उन पर, वलाकिन जिक्रा, सिवाय नसीहत करने के। ठीक है, यहां पर जो जिक्रा है वो क्या, याद दहानी कराना, नसीहत करना। ठीक है, जैसे कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, कि याद दहानी कराते रहा करो, क्योंकि याद दहानी कराना वो ईमान वालों को, मानने वालों को फायदा देता है। तो यहां पर जो जिक्रा है ये वो वाली याद दहानी वाला जिक्रा होगा। ठीक है, वलाकिन जिक्रा क्या मतलब, कि जो मुत्तकी लोग हैं ना, उनको बुरे लोगों के बुराई में से तो कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कि वो बुरा करते हैं तो इनको भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो गुनाह का हिस्सा इनको भी मिल जाएगा, नहीं, इनके ऊपर नहीं है उनका मामला। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर क्या है, जिक्रा, याद दहानी करा, नसीहत करता करते रहे। ठीक है, लअल्लहुम यत्तकून, कि शायद कि वो लोग डर जाएं, नसीहत से डर जाएं। लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि वो लोग नसीहत से डर जाएं। ठीक है, यानी इसका तर्जुमा जो है वो लाल्ला का तर्जुमा जो है वो शायद से या उम्मीद है कि ऐसे बनता है, ताके का जो लफ्ज हजरत ने यहाँ पे लिखा है ना, तो ये ताके का जो लफ्ज है इससे बजाहिर ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को नसीहत करेंगे तो वो जरूर बिल जरूर डर जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ताके के लफ्ज का मतलब ये नहीं होता कि जरूर जरूर डर जाएगा, बल्कि यहाँ पे ताके का लफ्ज जो हजरत ने इस्तेमाल किया है वो भी शायद के मानी में ही है, शायद के वो लोग डर जाए। क्यों? इसलिए कि आपके नसीहत करने के ऊपर किसी का डर जाना, ये तो उसका हिदायत पा जाना है ना, तो हिदायत आपकी नसीहत की वजह से उसको मिली? नहीं, हिदायत तो अल्लाह की तौफीक से उसको मिलनी है, अल्लाह के फैसले की वजह से उसको मिलनी है। ठीक है, तो हम नसीहत करें जरूरी नहीं है कि वो हमारी नसीहत को माने, लेकिन हमारा क्या क्या काम है, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, नसीहत कर। ठीक है, तो मुत्तकी हो जाने के बाद नसीहत करने की जिम्मेदारी जो है ना वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन नसीहत करने की जिम्मेदारी, ठीक है ना, आजकल जो आप कल भी जो लोग कुछ सुन रहे थे और उसके अलावा भी जो बातें वगैरह होती हैं, जब कराची में आते हैं तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का हाल होता है और सड़कों का हाल होता है, तो बहुत ही हर जगह, यानी हर सड़क ऐसी है जैसे कि आप चांद की सरफेस के ऊपर, चांद की सरफेस भी शायद इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होगी जितनी की कराची की तकरीबन सारी सड़कें। ठीक है, सारी तो नहीं है लेकिन तकरीबन सारी। तो अब इस किस्म की सड़कों के ऊपर जो लोग गाड़ी के अंदर सफर करते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर सफर करते हैं, और घंटों घंटों सफर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो उनका गुस्सा जो है ना फिर वो आसमान को छू रहा होता है। ठीक है, अच्छा खासा जो है वो स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है। तो अब जो है ना वो अक्सर जो है ना फिर लोगों के दिलों में फिर इस किस्म के जज्बात आते हैं कि जो दूसरा बंदा गलत कर रहा है, जिसकी वजह से गलत हो रहा है, बस उसको मारो। ठीक है, उसको शूट कर दो, उसको जो है ना वो गोली मार दो, और बस हर एक चीज को जो है वो जोर से रोक दो, मना कर दो। अच्छा, खुद तो कुछ नहीं करते, ये नहीं है कि खुद करेंगे, खुद तो बस अपने अपने अंदर जो है ना वो पेचताप खाते रहते हैं। ठीक है, तो भाई तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो जाके लड़ो ना, जाकर के लोगों से मरो, जाकर के लड़ो लोगों से, है ना। नहीं, वो खुद नहीं लड़ेंगे जाकर के, खुद नहीं जाकर के किसी को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करेंगे, लेकिन बस वो अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं कि वो ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो ये काम क्यों नहीं कर रहा, उसको ये काम करना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए। खसूसन उन लोगों के खिलाफ जो कि नसीहत का काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये नसीहत का काम क्यों कर रहे हैं, इनको तो मारना चाहिए जाकर, राइट, इनको तो जो है ना वो हर एक को जो है वो जोरे बाजू से रोकना चाहिए, या हर एक को जो है वो जुबान से जाकर के रोक देना चाहिए गलत काम करने से। ये नसीहत क्यों कर रहे हैं? नसीहत करना तो बड़ा आसान काम है, राइट, जिहाद क्यों नहीं करते जाकर के, ये सड़कों पे क्यों नहीं निकलते जाकर, ठीक है, और ये जो है वो जलाओ घेराओ क्यों नहीं करते? ये जालिम हुक्मरानों को जो है वो उनके तख्त से खींच करके नीचे क्यों नहीं उतारते, इनको जबा क्यों नहीं कर देते, इस किस्म की बातें कर रहे होते। ठीक है, तो यहां पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई जिक्र, ठीक है, आप तो गुस्से में आकर के या अपनी ला इल्मी या कम इल्मी की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आप कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, ठीक है, तो कुरान किसका कलाम है, कुरान किसकी किताब है, किसी मौलवी साहब की लिखी हुई किताब है क्या, किसी नसीहत करने वाले जो है वो बेवकूफ इंसान की लिखी हुई किताब है क्या कुरान, या किसकी किताब है लिखी हुई, ये किसकी किताब, किसका कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है, और अल्लाह कौन है जिसने इसको बनाया, इंसानों को बनाया, नहीं अल्लाह ताला वो नहीं है जिसने इंसानों को बनाया, अल्लाह ताला वो नहीं है जिसने कि पूरी कायनात को बनाया, अल्लाह ताला वो नहीं है जो कि पूरी कायनात का राजक है और मालिक है और खालिक है, ठीक, और कादिर है, तो उसका ये कलाम है ना, तो वो तो कह रहा है कि जिक्रा नसीहत करो, तुम्हारे ऊपर नसीहत के अलावा और चीज नहीं है। अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको दरोगा बना करके नहीं भेजा, ठीक है, हमने आपको दरोगा बना करके नहीं भेजा, ठीक है, और अपने महबूब अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के जरिए से ये भी हमें बताया अल्लाह ताला ने कि अगर तुम जोरे बाजू से रोक सकते हो तब तुम रोको, और अगर नहीं रोक सकते हो तो जुबान से समझाने की कोशिश करो, जुबान से क्या काम करता है इंसान, नसीहत ही करता है, ठीक है, और अगर जुबान से भी ना तुम नसीहत करने पे कादर नहीं हो, जैसे कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो लोग बिल्कुल ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, यानी सुन करके अमल करने की बजाय वो उल्टा तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, ठीक है, तो तुम दिल में बुरा समझो उस बात, ठीक है, तो अल्लाह ताला तो ये बात कर रहा है, अल्लाह ताला तो ये फरमा रहा है, और आप जो है वो हर वक्त इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि ये नसीहत करने वाले लोग जो हैं ये जो है वो रोकते क्यों नहीं है लोग, ये क्यों नहीं करते हैं, ये वो क्यों नहीं करते हैं, ये ऐसे एहतजाज क्यों नहीं करते हैं, ये ऐसे जो है वो लोगों को बंदूक से क्यों नहीं उड़ा देते हैं, हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को बंदूक, अब हर एक को जो है वो क्या कहते हैं क्रिंच कर देना चाहिए, क्रिंच करने का मतलब उनका होता है कि मार देना चाहिए बस, ये जितने जो है वो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और करप्ट जो है वो ये हैं और करप्ट वो हैं, उनको मार देना चाहिए। मैंने कहा मैं आपको तो मार नहीं सकता, आप ऐसी गलत गलत बातें कर रहे हैं, तो मारने को तो सबसे पहले अगर मारना चाहिए तो मुझे आपको मारना चाहिए, क्योंकि आप गलत बातें कर रहे हैं, जहालत की अपनी जहालत के साथ जो है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको कि आप जो है वो बिल्कुल हक समझ रहे हैं, और बल्कि ऐसी ऐसी बातें खाली मेरे सामने बैठ के नहीं कर रहे, बल्कि सारी दुनिया में भी सोशल मीडिया के जरिए से जो है वो आप गलत बातें फैला रहे हैं, तो अगर मारने की इजाजत होती तो सबसे पहले तो मैं आपको मारता, ताकि दुनिया से कम अज कम एक फितना तो खत्म हो जाए, बात समझ आ रही है आपको, कि अगर मारने वारने की इजाजत होती है अल्लाह ताला की तरफ से तो सबसे पहले तो आपको, मीडिया से क्या होता है, मीडिया के जरिए से उल्टे सीधे अड़बड़ बड़ा किस्म के जो नजरियात होते हैं वो पूरी दुनिया में एकदम से फैलाते रहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फितना है ना कि एक बंदा बैठा हुआ अपने घर के अंदर पूरी दुनिया में जो है वो वायरल कर देता है बिल्कुल बातिल चीजों को, राइट, शर को पूरी दुनिया में फैला देता है, तो आप जो कह रहे हैं कि बुरे लोगों को मार देना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको मारना चाहिए जो कि आप सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन मारने की इजाजत ही नहीं है, जिस तरह आपको मैं नहीं मार सकता उसी तरह किसी दूसरे को भी मैं नहीं मार सकता, राइट, तो भाई नसीहत करने की बात है ना, नसीहत करने को अल्लाह ताला ने कहा है, वो जो जिहाद है ना, जिहाद जो कि बदर के मैदान के अंदर हुआ था, वो कि तुम जिहाद शुरू कर दो उसके साथ, तलवार लेकर के जो है वो उसके सर पे पहुंच जाओ, उसको मार दो जा करके उठा करके, उसको जिहाद को थोड़ी कहते हैं, वो तो खालिसतन दहशतगर्दी और बल्कि अपना नफ्स परस्ती कहलाएगी, बल्कि आजकल तो सीधी सी बात है दिमाग की खराबी होती है, ये लोग कहीं पे जाकर के बंदूक से चारों लोगों को मार देते हैं, कहीं पे जाके कोई किसी को मार देता है, ठीक है ना, तो अगर वो काफिर होता है मारने वाला तो वो जो है वो क्या और अगर वो मुसलमान मारने वाला होता है तो वो दहशत गर्द कहलाता है। लेकिन असल में उसका भी दिमाग खराब था, इसका भी दिमाग खराब था। ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने क्या जिहाद किया, नहीं, दिमाग खराब था उसका, मेंटल जो है वो कैपेसिटी। इस्लाम की अलिफ बे भी नहीं पता हो, तो इस्लाम का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। ठीक है, तो इस्लाम में तो ये हमारे दीन तो बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देता कि जो तुम्हें अच्छा ना लगे तुम उसको मारना शुरू कर दो। लेकिन जो गुस्से के अंदर अपने तिल मिला रहे होते हैं, खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो बस जो है ना वो मौलवी साहब जो है वो बैठ के बयान करते रहते हैं और जो है वो किसी को रोकते नहीं है जाकर के। भाई कैसे रोके, जब तक लड़ाई नहीं करेंगे मारेंगे नहीं लोगों को, वो रोकेगा ही नहीं, क्योंकि कोई सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तो वो कैसे रोकेगा जुबान से, तो वो रुकने ही नहीं वाला है। वो तो आपको किसी काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात को सुन करके जो है वो रुके। ठीक है, तो फिर मरने मारने की नौबत आएगी ना उसके बाद फिर, और मरने मारने की तो भाई आपको इजाजत ही नहीं है, राइट? मरने मारने की तो आपको इजाजत ही नहीं है। लेकिन ये जाहिल लोग जो होते हैं बगैर इल्म हासिल किए हुए शुरू हो जाते हैं ना हक और बातिल के बारे में बहस करना, तो अब वो यही समझना शुरू हो जाते हैं, नहीं, जिस तरह जो है वो बदर में जिहाद हुआ था और उहद में जिहाद हुआ था और खंदक में जिहाद हुआ था, बस कराची की सड़कों पर भी जिहाद करने की जरूरत है और पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर भी जिहाद करने की जरूरत है। ये जहालत की अलामत होती है, खाली पता वता कुछ नहीं होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो कुरान अजीम शान जो कि क्या है, अल्लाह का कलाम है और इस दीन का मंबा और महावर कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो क्या फरमा रहा है, वमा अलल लजीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शयइन वलाकिन ज़िक्रा, वलाकिन ज़िक्रा, नसीहत करना है तुम्हारी जिम्मेदारी। तो नसीहत तो जो सुनेगा उसी को नसीहत करेंगे ना भाई, बयान में लोगों को बुलाया, बैठो आइए आइए बैठ करके आप नसीहत करेंगे। अब जो है वो कोई सुनता ही नहीं है कि नहीं मैंने आना ही नहीं है, मैंने तो मौलवी की सुननी ही नहीं है, तो उसको कैसे नसीहत करेंगे भाई। ठीक है, तो वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून। हमारे तबलीग भाइयों का अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, वो सड़क पर चलते हुए लोगों को भी रोक रोक करके नसीहत करते हैं। ठीक है, उनका अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया है और बहुत बेहतरीन काम करते हैं जो कि लोगों के घरों पे जा करके नसीहत करते हैं, लोगों को जो है वो सड़क पे रोक करके नसीहत करते हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे जाके, वो भी तो लोगों को इतना बुरा लगता है, क्यों करते हैं इस तरह की बातें। ठीक है, तो नसीहत करने के मुख्तलिफ तौर तरीके अंदाज होते हैं ना, या तो आप महफिल जिक्र में नसीहत करें, या क्लास में बैठ करके जूम के ऊपर नसीहत करें, या जो है वो आप किसी और बयान के नसीहत करें, या आप तबलीगी इज्तिमा में नसीहत करें, या नक्शबंदी इज्तिमा में नसीहत करें, या इस तरीके से, तो ये सब नसीहत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ठीक है, बहरहाल जिक्र लअल्लहुम यत्तकून के शायद के वो डर जाए। ठीक है, वजर और छोड़ दीजिए, ये जर लफ्ज है, अमर का सीगा है, छोड़ दीजिए, अल्लदीना उन लोगों को, इत्तखजु दीनहुम लाइबं व लहवन, आप उन लोगों को छोड़ दीजिए कि जिन्होंने अपने दीन को लाइब और लहव बनाया हुआ है, खेल तमाशा बनाया हुआ है, वगर्रतहुमुल हयातु दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया है। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ है ना दीन की जो हवाएं चल चुकी हैं, हर बंदा ही दीनदार, राइट? हर बंदे ने थोड़ा सा दीन इधर से सीख लिया, उधर से पढ़ लिया, उधर से जो है वो सुन लिया, उधर सोशल मीडिया के ऊपर जाकर के फलानी यूट्यूब की वीडियो देख ली, अब जो है ना वो समझ रहा है कि उसको कुल दीन की समझ हासिल हो गई है। ये भी दीन को खेल तमाशा बना लेना है, खेल तमाशा बनाया हुआ है। ठीक है, और अब दीनी सोल्यूशंस दिए चले जा रहे हैं पाकिस्तान के मसलों को हल करने का, ये दीनी सोल्यूशन होना चाहिए, जिहाद होना चाहिए, ये जिहाद, राइट? तो ये जो आप जिहाद के फतवे दे रहे हैं अपनी जहालत के साथ, तो ये दीन को खेल और तमाशा बना रहा है। इसी वजह से ऐसे लोग जो है ना, जब हमसे कोई पूछते भी है ना, तो अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर यही होता है कि मैं यही सोचता हूं कि भाई वेयर डू आई स्टार्ट, कहां से शुरू करूं आपको समझाना, आपने तो ऐसा खेल तमाशा बना करके रखा हुआ है सारे के सारे दीन को, आपका तो इतना अजीब और गरीब किस्म का जो है वो नजरियात बनाए हुए हैं आपने सोशल मीडिया से इधर उधर से दीन सीख करके। अब आप अगर मुझसे कोई एक मसले के बारे में कोई बात पूछ भी रहे हैं तो इतना गलत आपका सवाल है, और इसके पीछे मुझे पता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मेस्ड अप है कि मैं कहां से आपको समझाना शुरू करूं, राइट? कहां से समझाना शुरू करो आप, और वो भी जो है ना वो दूर बैठे हुए जो है वो एक बस एक मैसेज लिख करके सवाल करो। भाई आप जरा इंगेज हो तो ठीक है, आपको आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आ जाएंगी, राइट? आप जरा सा दरस कुरान सुने, आप जरा सा क्लासेस लें, उनके अंदर हम ये बातें करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो आप इंगेज, इसको इंगेज होना कहते हैं, ठीक है ना? आप जरा जुड़े तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन नहीं, जुड़ना भी नहीं, इंगेज भी नहीं होना, बस तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो। ओ भाई तुम्हारा तो अलिफ बे सारा का सारा ही उल्टा हुआ है, मैं ऐसे कैसे तुम्हें एक व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जवाब दे दूं? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर डू आई स्टार्ट, कहां से मैं शुरू करूं बात करना यार? क्योंकि असल में हकीकत ही होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना उन्होंने दीन को तमाशा बनाया हुआ होता है, दीन इस तरह से नहीं सीखा जाता है, दीन तो इंगेज होकर के सोहबत के जरिए से सीखा जाता है, जैसे सहाबा कराम ने सीखा था। आप कौन सा 21वीं सदी के अंदर नया दीन लेकर के आए जो कि सोशल मीडिया से और जो है वो डिसएंगेज होकर के आप दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, डिसएंगेज होकर के दीन सीखना, ये 21वीं सदी वाला दीन है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है असल दीन के साथ, राइट? इसका असल दीन के साथ ताल्लुक नहीं है कि आप कोई मुसीबत लेकर के आ जाए और जो है वो उसका दीनी हल। भाई आपको दीन सीखना पड़ेगा, तरीके से सीखना पड़ेगा, सोहबत के साथ सीखना पड़ेगा, जैसे कि साहबा ने सीखा था, ठीक है? इसके बगैर जो कोशिश करते हैं ना एक आध सवाल जो है वो मुफ्तियों से पूछने की और मौलवियों से पूछने की, ठीक है, तो वो खेल तमाशा कर रहा होता है असल में। और खेल तमाशा भी क्यों कर रहा होता है? जरूरत हमुल हयात, तो उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी, क्योंकि दुनिया की जिंदगी ने ना उसको धोखे में डाला हुआ। क्या मतलब? वो दीन के जरिए से दुनिया के मसाइल का हल चाह रहा होता है असल, क्यों? इसलिए कि दुनिया उसको उसको अजीज है, उसको दुनिया से मोहब्बत है, राइट? ये जो पाकिस्तान की सड़कों का हल, पाकिस्तान के जो है वो करप्शन का हल, तो अब पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए से पाकिस्तान के मसलों का हल करने की कोशिश करता था, अब दीनदार बन गए साहब, रिटायर होने के बाद अब दीनदार बन गए, तो अब जो है ना इनको सोशल मीडिया पे दीन सीख सीख करके सुन सुन करके अब जो है ना ये क्या कर रहे हैं, अब इनको जो है ना वो पाकिस्तान के मसलों का हल दीन में चाहिए। तो क्यों चाहिए भाई? पाकिस्तान के मसलों का हल चाहिए, और पाकिस्तान के मसलों के लिए तो खाली दीन नहीं आया था ना, अगर पाकिस्तान का मसला हल ना हुआ तो आप दीन को नहीं सीखेंगे क्या? दुनिया के मसले हल नहीं हुए तो आप दीन को नहीं सीखेंगे क्या? भाई दुनिया के मसले जो हैं वो तो कोई उसकी गारंटी नहीं है कि आपकी जिंदगी में हल हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि हल हो भी नहीं हो, दुनिया ने तो हल नहीं होना है, दुनिया तो ऐसी जगह है कि जिसने अगर थोड़ा सा बेहतर बन भी जाना है ना तो थोड़ा थोड़ा अरसा ही चलना है उसने इस तरीके से, फिर उसके बाद फिर खराब हो जाना है। दुनिया तो देखें एक सादी सी बात है, आपने शायद ये अरबी का मकूला सुना होगा जो कि हकीकत पर मबनी है, बल्कि हदीस मुबारक है, ये मकूला नहीं है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, है ना? कि आमाल जो है ना इनका तो मुआमला उनके इख्तिताम पर है, कि इख्तिताम अगर अच्छा हुआ तब वो आमाल अच्छे थे, अगर शुरू में अच्छे आमाल थे लेकिन इख्तिताम उनका अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो आमाल बेकार है, राइट? जैसे कि आप सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, इबादतें करते रहे, लेकिन खात्मे के ऊपर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ईमान से महरूम हो गए, तो सारी जिंदगी की नमाजें और रोजे, जकात, सदके सब जाया हो गए, क्योंकि खात्मा सही नहीं है। खात्मा बिल खैर असल चीज होती है, ठीक है ना? इस दुनिया का खात्मा कैसे होगा? क्लास का टाइम तो खत्म हो गया है, तो अगर आप ये जवाब दे दें तो क्लास खत्म कर देते हैं। दुनिया का खात्मा कैसे होगा भाई? खैर पे खात्मा होगा इस दुनिया का या शर पे खात्मा होगा? ईमान पे खात्मा होगा इस दुनिया का या कुफर पे खात्मा होगा। इस दुनिया का खात्मा, दुनिया तो मिट्टी पत्थर का नाम है ना, तो दुनिया के खात्मे से मुराद दुनिया के इंसानों का खात्मा, ठीक है? तो दुनिया के इंसानों का खात्मा तो कुफर के ऊपर होगा ना, तो इसी बुनियाद पर कह दिया कि दुनिया का खात्मा कुफर पर होगा। और दूसरी बात क्या कि दुनिया का खात्मा तो कयामत पर होगा, और कयामत क्या है कि जिसके अंदर दुनिया का रेजा रेजा जो है बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा सब, ठीक है? तो भाई इस दुनिया के साथ क्या खैर की तुम जो है मेहनतें कर रहे हो, इस दुनिया का तो खात्मा हमें पहले से पता है कि बुरा है, राइट? तो दुनिया की, अब दीन भी चाहिए तो दुनिया के फायदे के साथ है कि जो है वो बिजली का निदाम ठीक हो जाए, तो सड़कों का निदाम ठीक हो जाए, तो फलाने का निदाम ठीक हो जाए, तो फलानी चीज ठीक हो जाए, राइट? ट्रैफिक का जो है वो मसाइल हल हो जाए, दीन पे लोग चलना शुरू हो जाए तो ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। भाई अगर अल्लाह ने हल कर भी दिए तो भी उस वक्त, अब आप देखते नहीं हो जापान के अंदर ट्रैफिक के मसाइल हैं, राइट? सिंगापुर के अंदर जो है वो सड़कों के मसाइल हैं, नहीं है? बिल्कुल भी सड़कों के मसाइल और ट्रैफिक के मसाइल नहीं है, लेकिन इंसानों के मसाइल हैं कि नहीं है? इंसान कैसे कैसे रूहानी और नफसियाती और जिस्मानी बीमारियों का शिकार, तीनों किस्म की बीमारी, रूहानी भी, नफसियाती भी, जिस्मानी भी, राइट? आपने अच्छी अच्छी सड़कें बना दी, बेहतरीन जो है वो निजाम बना दिया, लेकिन इंसानियत तो मर गई ना। तो आप पाकिस्तान के अंदर, भाई हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक हो जाए, लेकिन क्या वो इंसानियत की कामयाबी होगी? जरूरी तो नहीं है कि वो इंसानियत की कामयाबी भी हो, ठीक है? तो ये जो बातें होती हैं ना, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे होते हैं? जरूरत हमुल हयात, क्योंकि दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाला हुआ है। भाई दीन आखिरत के लिए है, दुनिया बने ना बने, आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं है, ठीक है? लोगों की खैर ख्वाही के लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा, लेकिन फोकस तो आखिरत की जिंदगी है ना, दीन तो आखिरत के लिए आया है, ठीक है? और वो आखिरत की गारंटी भी है कि अगर तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, बेशक तुम्हारी दुनिया ठीक ना हो, आखिरत तुम्हारी ठीक होके रहेगी। तो फोकस तो आखिरत पे करना है ना, लेकिन जिसका फोकस ही दुनिया की जिंदगी हो तो फिर वो दीन को भी दुनिया की ही खातिर सोच रहा होता है। तो फरमाया कि वदक्किर बिही अंतुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, भी लंबी आयत है और क्लास का टाइम जो है वो काफी ओवर हो चुका है, इंशाल्लाह इसको फिर यहीं से आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। किसी कोई सवाल पूछना हो, कोई अपनी तरफ से जो उनको इश्काल हो अगर किसी बात के ऊपर। ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। वाखर दावा अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।